الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون إلى الآخر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں ہم سورۃ الانبیاء کی تفسیر پڑھ رہے ہیں معرف القرآن کی جلد نمبر 6 سے شروع کی 10 آیات ہی ابھی چل رہی ہیں پچھلی چند کلاسز سے. تو اس میں ہم پہنچے تھے پیج نمبر 171 پر, اور جس آیت کا کہ معارف و مسائل پڑھ رہے تھے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ کافر نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جب قرآن کو سنتے تھے تو سن کر کے غور تو کرتے تھے قرآن کے اوپر, کیونکہ غور کیے بغیر ان سے رہا نہیں جاتا تھا, لیکن یہ اپنے کانوں سے سنتے تھے, دماغ سے غور کرتے تھے, لیکن دل کو جو ہے نا, یعنی دل دوسرے کاموں کے اندر لگائے ہوئے تھے. دل انہوں نے اپنے جھوٹے خداؤں کو دیے ہوئے تھے, تو اس وجہ سے ان کو فائدہ تو ہوتا نہیں تھا. تو یہ لوگ پھر آگے سے یہ بھی کہتے تھے کہ یہ جو قرآن کی آیات جو سناتے ہیں نا, تو یہ تو ہیں اضغاث و احلام, یہ تو بےحودہ, نعوذ باللہ, بےحودہ خواب ہیں. تو اسی کی تفسیر ہم پڑھ رہے تھے کہ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تحت لکھا کہ اضغاث و احلام ان خوابوں کو کہا جاتا ہے جن میں کچھ نفسانی یا شیطانی خیالات شامل ہو جاتے ہیں, اسی لیے اس کا ترجمہ پریشان خیالات سے کیا گیا ہے. یعنی ان منکرین نے اول تو قرآن کو جادو کہا, پھر اس سے آگے بڑھے تو پریشان خواب کہنے لگے, پھر اس سے بھی آگے بڑھے تو کہنے لگے کہ یہ تو خدا پر افتراء اور بہتان ہے کہ یہ اس کا کلام ہے. ٹھیک ہے, یعنی خدا کو تو یہ مانتے تھے, اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے کہ خالق ہیں, مالک ہیں, اور یہ بھی مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اپنے پہلے بھی بھیجے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا ان کو پتا تھا, مانتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو, اسماعیل علیہ السلام کو, اور حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کو بھی مانتے تھے, ہود علیہ السلام کو, صالح علیہ السلام کو, ان سب کو مانتے تھے کہ یہ اللہ کے انبیاء ہیں, لیکن ان کی نہیں مانتے تھے, ان کو مانتے تھے, ان کی نہیں مانتے تھے. اور ان کی جو مانتے تھے تھوڑا بہت, اس میں بھی انہوں نے اپنی بدعتیں شامل کر دی تھیں. بدعتیں یعنی دین کے اندر نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ بنا لی تھیں کہ ایسے طواف کرنا ہے بے لباس ہو کر کے, اور جو ہے وہ بتوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے ذریعے کے طور پہ استعمال کرنا ہے, اور اس طرح کی اوٹی سیدھی چیزیں انہوں نے بنا لی تھیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو لوگ تھے نا, یہ آج کے زمانے سے کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ لوگ جو تھے یہ کامل طور پر مادہ پرست نہیں تھے, یہ لوگ ایتھیس نہیں تھے. ایتھیس کا ترجمہ بنتا ہے دہریہ. ٹھیک ہے, کچھ لوگ جو ہے وہ ملحد سے ترجمہ کرتے ہیں ایتھیس کا, لیکن نہیں, ملحد بالکل مختلف چیز ہوتی ہے. الحاد کرنے والے کو ملحد کہتے ہیں, تو الحاد بالکل مختلف چیز ہوتی ہے, اور دہریت بالکل مختلف چیز ہوتی ہے. دہریت ایتھیزم کا ترجمہ بنتا ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے, یہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی ہے اور خود بخود چلے چلے جا رہی ہے. یہ جو ڈارونز تھیوری کہا جاتا ہے جس کو, یا جو بھی سائنسدان کہتے ہیں کہ نہیں جی کوئی خدا نہیں ہے اور سب کچھ خود بخود چل رہا ہے, تو اس کو ایتھیزم کہتے ہیں, خدا کا انکار. ٹھیک ہے, اچھا, ایتھیزم کی ایک اور بھی شکل ہے. ایتھیزم کی ایک میوٹیٹڈ فارم ہے. میوٹیٹڈ مطلب وہ تھوڑی سی نا, ایتھیسٹ بھی جو ہے نا وہ بھی اپنے آپ کو انہوں نے تبدیل کر لیا ہے تھوڑا سا. ٹھیک ہے, تھوڑا سا اپنے آپ کو ریفائن کر لیا ہے. وہ کیسے ریفائن کیا انہوں نے, ایتھیسٹ نے اپنے آپ کو کیسے ریفائن کیا ہے, पहले तो कहते थे कोई खुदा नहीं है, ठीक है, डार्विन के जमाने में 200 साल पहले की बात है, वो कोई खुदा नहीं है, और यही चलता रहा उनका, ठीक है। लेकिन फिर उन्होंने जब ये देखा ना कि जब साइंस ने और ज्यादा तरक्की करी है, तो साइंस ने इतनी सारी चीजों को, यानी साइंस ने से मुराद ये कि साइंटिफिक डिस्कवरीज के जरिए से बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आई हैं कि जिनसे एक खालिक का तो पता चलता है कि हाँ भाई ये पूरा निजाम खुद ब खुद बन ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है बनना, ठीक है। तो खालिक तो इसका कोई ना कोई है, और ये भी कि ये पूरा का पूरा निजाम जो है ना, कायनात का निजाम, दुनिया का निजाम, ये सारे के सारे जो प्लैनेट्स जो हैं वो सन के गिर्द घूमते हैं, वो एक खास दायरे में घूमते हैं, और एक एक चीज जो है वो प्री कैलकुलेटेड लगती है। तो इससे ये भी पता चलता है कि खालिक एक से ज्यादा नहीं है, बल्कि एक ही खालिक है, एक ही बनाने वाला है, ठीक है। तो अब जब साइंस ने इस तरह की चीजें भी प्रूफ करनी शुरू कर दी ना, तो फिर इन्होंने अपने अपनी जो बदमाशी थी, उस बदमाशी को इन्होंने थोड़ा सा रिफॉर्म किया। वो रिफॉर्म क्या किया, इन्होंने कहा, कहना शुरू कर दिया कि हम खुदा के खिलाफ नहीं है, हम खुदा के खिलाफ नहीं है, नहीं एग्नोस्टिक, नहीं एग्नोस्टिक थोड़ा सा डिफरेंट चीज होती है, मैं अभी कुछ और बात कर रहा हूँ। तो इन्होंने कहा जी हम खुदा के खिलाफ नहीं है, ठीक है, हाँ हम खुदा को मानते हैं, कोई खालिक है, कोई मालिक है, ठीक है, लेकिन हम जो है ना वो इन अधियान को नहीं मानते हैं। हम ये जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन नजर आते हैं ना, कि हिंदुइज्म है और क्रिश्चियनिटी है और जुडेज्म है और इस्लाम है और बुद्धिज्म है और जो भी जोरास्ट्रिज्म है, हम इन इजम्स को नहीं मानते, हम कहते हैं बस खुदा है और हम और खुदा बस, राइट, हम डायरेक्ट खुदा से अपना ताल्लुक बना देंगे और खुदा के करीब हो जाएंगे, कोई 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 शरीयत, कोई उसूल, कोई कवायद, ये सब कुछ नहीं है, ये सब मौलवियों ने बनाए हुए हैं, और हर दीन के अंदर मौलवी होते हैं, खाली इस्लाम के मौलवी के थोड़ी होते हैं, यहूदी भी तो मौलवी होते हैं, ईसाई भी तो मौलवी होते हैं, है ना, उधर के मॉन्क्स होते हैं, बुद्धिज्म के मॉन्क्स होते हैं, वही वहां के मौलवी होते हैं। तो इन्होंने कहा कि हम मौलवियों के खिलाफ हैं, हम बस बस हमारी जो अकल है वो उस अकल के जरिए से हम खुदा को खुश कर लेंगे, आप जैसे भी करें वो हमारी मर्जी, कौन हमें कोई कहने वाला नहीं होना चाहिए, कोई कुछ करने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये एथियज्म की मॉडर्न शक्ल है, ठीक है, लेकिन ये मॉडर्न शक्ल भी जो है ना, ये बहुत ज्यादा मकबूल नहीं हुई है, ये बहुत ज्यादा मकबूल नहीं हुई है, इसके भी एडहेरेंस जो है वो थोड़े ही हैं, ठीक है। इस दौर के अंदर जो गुमराही की शक्ल है, फितने दज्जाल के जमाने में जो गुमराही की शक्ल सबसे ज्यादा यानी फैली हुई है ना दुनिया के अंदर, वो एथियज्म नहीं है, बल्कि वो क्या है, वो है इल्हाद, इल्हाद, ठीक है, कि आप दीन, किसी दीन के साथ हैं, किसी दीन के साथ हैं, लेकिन आपने उस दीन का हुलिया बिगाड़ दिया है, ठीक है, दीन का हुलिया बिगाड़ दिया है, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है ना, दीन का हुलिया बिगाड़ देने वाली फॉर्म, जिसको इल्हाद कहते हैं, ठीक है, ये वो फॉर्म थी जो कि पहले से चल रही है, ठीक है। तो मुशरिकीन मक्का के जमाने में भी ये मादियत नहीं थी कि नहीं जी कोई खुदा नहीं है, कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है, कोई रूहानियत नहीं है, और सिर्फ जो है वो बस मादियत है, और जो जो फिजिकली चीजें आपको समझ में आती हैं बस वही हैं, और कोई रूहानी चीज नहीं है, नहीं, उस जमाने में ये नहीं था, ठीक है। उस जमाने में क्या था, ये दीन था, लेकिन दीन का बेड़ा गर्क कर देना, हुलिया बिगाड़ देना, उसके अंदर बिदात और खराफात को शामिल कर देना, ठीक है ना, अपनी तरफ से चीजों को बना देना बगैर दलील के, ठीक है। तो ये लोग जो थे, ये आजकल के जैसे आपको नजर आते हैं ना, अहले बिदत जिनको कहते हैं, ठीक है, मजारों पे जाके सजदा कर रहे हैं और कुंडे कर रहे हैं, तो वो मीलादें अपने अपने तरीके से मना रहे हैं, ठीक है ना, वो मतलब जो उसके अंदर चीजें उन्होंने शामिल कर दी हैं, जिसकी कोई सबूत ही नहीं है कुरान और हदीस से। तो ये कौन कहलाते हैं, ये अहले बिदत कहलाते हैं ना, दीन के अंदर नई नई चीजों को शामिल कर देना, जिसका के सबूत है ही नहीं कोई कुरान और सुन्नत से, ठीक है। बिल्कुल मुशरिकीन मक्का यही हरकत किया करते थे, मुशरिकीन मक्का यही हरकत किया करते थे, अहले बिदत वाली हरकत। लेकिन उनकी जो बिदतें थी वो हमारे जो जो अहले बिदत है ना उनसे बढ़ करके थी, ठीक है ना, क्योंकि हमारे यहाँ जो अहले बिदत कहलाते हैं तो वो उनको हमारे उलमा अहले हक उलमा भी उनको काफिर नहीं कहते, ठीक है, कुफर का फतवा नहीं है उनके ऊपर, अहले बिदत के ऊपर कुफर का फतवा नहीं है ना, ठीक है, उनको मुसलमान ही, लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है वो ऐड कर ली है दीन के अंदर। तो उस जमाने के जो अहले बिदत थे उन्होंने अकीदे के अंदर इतनी सारी खराबियां ऐड कर ली थी कि वो दीन इस्लाम से खारिज हो चुके थे, ठीक है, वरना तो ईसा अलैहिस्सलाम कभी तो दीन इस्लाम ही है ना, मूसा अलैहिस्सलाम कभी तो दीन इस्लाम ही है ना, हूद अलैहिस्सलाम और सालेह अलैहिस्सलाम ये भी तो दीन इस्लाम ही है ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माईल अलैहिस्सलाम ये भी तो दीन इस्लाम ही है ना, ठीक है, तो ये लोग दीन इस्लाम, इनके आबाओ अजदाद दीन इस्लाम ही के पैरोकार थे, लेकिन इन्होंने फिर बिदात और खराफात उसमें शामिल करके बिल्कुल ही दीन से बाहर निकल गए थे, हत्ता कि खुदा की बेटियां और खुदा के बेटे और खुदा के मददगार और इस तरह की चीजें उन्होंने शुरू कर दी थी। अब नबी अलैहिस्सलाम ने आकर के जब फरमाया कि नहीं ऐसा नहीं है, ये तो है, ये तो तुमने अपनी तरफ से मनाया हुआ है, तो इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को किस तरीके से जवाब दिया, कैसे काउंटर किया कि ये तो खुदा के ऊपर बोहतान लगा रहे हैं कि खुदा की बेटी नहीं है, कि खुदा की बेटा नहीं है, तो खुदा को पार्टनर्स की जरूरत नहीं है, ठीक है, यानी उल्टा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, है ना, वो उर्दू का मुहावरा सुना होगा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कोतवाल कह रहे हैं चोरी मत करो, तुमने जो है वो खजाने के अंदर से इतनी चीजें निकाल करके चले गए, वापस लाओ ला उन चीजों को, है ना, और वो चोर कहे तुम कौन होते हो, तुम्हें क्या पता कि खजाने के अंदर ये चीज थी कि नहीं थी, तुम्हें क्या पता कि मैंने चुराई है वहां से, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से नबी का यही काम होता है ना कि जी जो दीन की असल जो शक्ल थी तुमने इस शक्ल के अंदर जो है वो खुर्द बुर्द कर दी है, तो उस शक्ल को जो है वो सही सही शक्ल के ऊपर लेकर के आओ, तो उल्टा वो नबी को ही बोलना शुरू करते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपने जो है वो खुदा के ऊपर इफ्तरा और बोहतान बांधना शुरू कर दिया, ठीक है, जैसे छोटे बच्चे नहीं करते, पहले किसी को मारते हैं फिर आगे से जब उनको बच्चा मारता है ना तो रो करके अम्मी के पास पहुंच जाते हैं, है? और इस तरह से शिकायत लगाते हैं कि जैसे उसने पहले मारा था, हालांकि पहले इसने मारा था, ठीक है, तो रोना शुरू हो जाते हैं कि उसने मुझे क्यों मारा, ठीक है, बिल्कुल वही हरकत ऐसे लोगों की भी होती है, क्योंकि ये भी फिर इंटेलेक्चुअली बच्चे ही होते हैं, फिर असल में ना इंटेलेक्चुअली इनकी जो जहनी जहनी जो 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 लेवल होता है ना वो बच्चे की जैसे ही हो जाता है, ठीक है। तो अदगासु अहलामिन कि ये परेशान ख्वाब हैं, ये भी कहते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को, फिर कहने लगे कि असल बात ये है कि ये कोई शायर आदमी है, शायराना ख्यालात इसके कलाम में होते हैं, शायराना ख्यालात, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान की आयात पढ़ते थे ना ये आयात तो शेर नहीं होती थी, क्योंकि शेर का एक तरीका होता है, शेर का एक यानी काफिया बंदी होती है उसके अंदर, एक उसके अंदर यानी स्टैंजास जो है वो बाकायदा एक दूसरे से मैच कर रहे होते हैं, कुरान के अंदर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अरबों को ये बात अच्छी तरीके से पता थी कि अरबी शायरी जो जिस चीज को कहते हैं ना कुरान की आयात अरबी शायरी है ही नहीं, तो इस वजह से ये कुरान को शेर व शायरी कह ही नहीं सकते थे, ठीक है, और नबी अलैहिस्सलाम सलाम को शायर कह ही नहीं सकते थे, तो कहते क्या थे, फिर कहते थे कि ये शायराना ख्यालात हैं, कि जिस तरीके से एक शायर लंबी लंबी कहते क्या कहते हैं हमारे छोड़ता है, लंबी लंबी छोड़ता है ना जमीन और आसमान के कुलावे मिला देता है शायर अपनी शायरी के अंदर, और शायरी की ये नेचर है, ये शायरी यानी शायरी जो है ना उसके अंदर जो बातें की जाती हैं वो उसके अंदर एग्जैजरेशन होती है शायरी के अंदर, ठीक है ना, तो कुछ लोग जो है ना वो शायरी में अगर थोड़ी सी एग्जैजरेशन नजर आए ना तो उसकी बुनियाद पर कुफर का फतवा लगा देते हैं, ठीक है, शायरी में जो एग्जैजरेशन नजर आती है उसकी बुनियाद पर जो है ना वो कुफर का फतवा लगा देते हैं, हालांकि शायरी की हकीकत यही है कि उसके अंदर एग्जैजरेशन यानी लंबा चौड़ा लंबी चौड़ी बातें जो है वो शायरी का हिस्सा है और हमेशा से रही है, ठीक है, हाँ कहीं ना कहीं यू हैव टू ड्रॉ द लिमिट, यू हैव टू ड्रॉ द लाइन, ठीक है, तो वो फिर उलमा डिसाइड करेंगे कि जी शायरी के अंदर आप कहां तक जा सकते हैं, और उसके आगे अगर आप चले गए ना तो फिर वो नाजायज हो जाएगा, ठीक है, आम आदमी की समझ में ही नहीं बातें आ सकती हैं। आम आदमी ये लिमिट्स ड्रॉ नहीं कर सकता, उसको नहीं समझ में आएगी, उसको शायरी का ही नहीं पता होता, ठीक है। और उसी तरह से उसको अकीदे का भी नहीं पता होता कि भाई शायरी के अंदर कब अकीदे की लिमिट्स को आप क्रॉस करके कुफर में दाखिल हो गए, आम आदमी को पता ही नहीं चलता, ठीक है। इस वजह से उलमा से शायरी का पूछना पड़ता है कि ये शायरी ठीक है कि ये शायरी खराब है, ये शायरी जो है ये कुफर के दायरे में दाखिल हो गई है, ये शायरी जो है वो यानी बद अखलाकी के दायरे में दाखिल हो गई है, बेहयाई के दायरे में दाखिल हो गई है, या ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। ये एक मुश्किल डिसीजन होता है जो कि अच्छे खासे इल्म चाहिए होता है उसके लिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर नबी अलैहिस्सलाम के बारे में शायरी के अंदर बहुत ऐसी ऐसी बातें मिलती हैं, ठीक है ना। यानी हजरत हसान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला उनकी शायरी, उनके अशार कैसे हैं कि जी, जिसका मफहूम बनता है, मुझे शेर याद नहीं है लेकिन जिसका मफहूम बनता है कि आप ऐसे हैं कि गोया के अल्लाह ताला ने आपसे पूछ करके आपको बनाया, आप इतने खूबसूरत हैं, आप इतने अच्छे हैं कि गोया के अल्लाह ने आपसे पूछ के आपको बनाया। अब बंदे से पूछ करके अल्लाह ताला बनाया उसको, तो ये आम बंदे को तो समझ में नहीं आती है बात के अंदर। अच्छा, ये तो कुफर हो गया, ये तो अल्लाह ताला के ऊपर बोहतान हो गया, ठीक है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि ये जो हसान बिन साबित हजरत अन्हों ने जो शेर कहा वो नबी अलैहिस्सलाम के सामने पढ़ा गया और नबी अलैहिस्सलाम ने उसको पसंद फरमाया। तो भाई जब अल्लाह के नबी उसको पसंद फरमा रहे हैं तो आप कौन होते हैं उसके ऊपर शिर का फतवा लगाने वाले, कुफर का फतवा लगाने वाले आप कौन होते हैं? लेकिन उमूमी तौर पर बंदों को पता नहीं होता, उस वजह से अल्फाज सुन करके ना वो परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो शायरी की तो ये यानी एसेंस है कि उसके अंदर यानी एक्सट्रीमिटीज होती हैं, ठीक है। तो इसी बात की बेसिस पर इन्होंने कहा कि जी, तो कुरान के अंदर जो ऐसी ऐसी बातें है ना कि सातों आसमान होते हैं और फरिश्ते हैं और ये हैं वो हैं, तो ये भी शायरी ही की तरह की चीज है, अगरचे कि इसके अल्फाज शायरी जैसे नहीं है लेकिन इसके मफहूम शायरी जैसे ही है, ठीक है। तो यही कहते थे कि शायराना ख्यालात इनके कलाम के अंदर होते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। किसी को कोई सवाल है इस पूरी डिस्कशन के ऊपर तो आप पूछ लिए लिख करके। फलियातना भी आयतन, ठीक है। फिर नबी अलैहिस्सलाम से ये डिमांड किया करते थे कि चाहिए इनको कि ये आज ले आए हमारे पास कोई आयत, कमा उरसल अव्वलून, जैसे कि पिछले जो नबी आए थे, रसूल आए थे, तो वो आए थे लेकर के आए थे, यानी निशानी अल्लाह ताला के लेकर आए थे ना, तो ये भी निशानियां लेकर के आए, कोई एक निशानी लेकर के आए, आया एक निशानी, ठीक है। तो इसके तहत देखते हैं हजरत कि यानी अगर ये वाकई नबी व रसूल हैं तो हमारे मांगे हुए खास मौजजात दिखलाएं, ठीक है। ये जुमला ही और ये आयत ही कंफर्म कर रही है कि ये पिछले रसूलों को मानते थे, ठीक है ना। ये नहीं कहते थे कि जी कोई खुदा नहीं है, कोई रसूल नहीं है, कभी कोई रसूल नहीं आया, मानते थे पिछले रसूलों को, ठीक है। तो जैसे कि आज के अहले बिदत जो है ना, ये औलिया कराम को मानते हैं, है ना, ये मशायख को मानते हैं, ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी को भी मानते हैं और बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी को भी मानते हैं और निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को भी मानते हैं और अजमेर ख्वाजा निज़ाम क्या नाम है ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह उनको भी मानते हैं, सारे औलिया को मानते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से ये लोग भी जो है ना सारे अम्बिया को मानते थे, क्योंकि उस जमाने में उनके पीछे जो थे वो अम्बिया का कहीं सिलसिला चल रहा था। औलिया का सिलसिला तो उस वक्त शुरू हुआ ना जब अम्बिया का सिलसिला खत्म हो गया, तो फिर आगे उम्मत के अंदर औलिया रह गए, अम्बिया का सिलसिला खत्म हो गया, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जिस तरह पिछले, जैसे आजकल कोई कहे ना कि अच्छा जी आज जो मौलाना साहब हैं ये बड़ी दीन की बातें करते हैं ना, तो ये भी तो जरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जैसे कुछ करामतें शरामतें तो दिखाए ना, ये तो कोई करामत दिखाते ही नहीं है, है ना, इनकी क्या बात है, यानी कैसे हम इनको माने, करामत ही कोई नहीं दिखा रहे, ठीक है। तो उसी तरीके से उस वक्त के काफिर नबी अलैहिस्सलाम से कहते थे मौजज़े दिखाओ, निशानियां दिखाओ अल्लाह ताला की, ठीक है। तो इसके जवाब में हब ताला ने फरमाया कि पिछली उम्मतों में इसका भी तजुर्बा और मुशाहिदा हो चुका है कि जिस तरह का मौजज़ा उन्होंने खुद तलब किया अल्लाह के रसूल के हाथों, वही मौजज़ा सामने आ गया, ठीक है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी का वाक़या हम एक दूसरी तफसीर की क्लास के अंदर पढ़ ही रहे हैं, सूरह आराफ के आखिर में, कि उन्होंने कहा कि जी अच्छा, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो एक ऊंटनी जो कि 10 महीने की गाभन हो, यानी प्रेग्नेंट हो 10 महीने की, वो एकदम से आप निकाल के दिखाते हैं इस पहाड़ में से। यानी यानी कहते हैं ना, अपनी अपनी फैंटेसी, यानी दिस इज व्हाट दे कुड थिंक कि पहाड़, यानी एक बिल्कुल ही ना, यानी बचकाने की बात नहीं होती कि यानी सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का तो अभी हमें पता है ना, ठीक है ना, तो इस वजह से हमें लगता है कि ये तो कोई यानी आम सी बात है। लेकिन ऐसे ही है जैसे कि आप किसी शेख साहब जो है ना आपके पास आकर के आपको नसीहत कर रहे हैं कि गुनाह छोड़ दें और नेकी की जिंदगी गुजारें और नमाज पढ़ा करें और पर्दा क्या करें और ये क्या करें, तो आप कहेंगे अच्छा शेख साहब आप जो बातें कहें ना इनकी सच्चाई पहले प्रूफ तो करें ना, तो आप ऐसा करें कि बस यहाँ पे ना एकदम से एक घड़ा खुद जाए और उस घड़े के अंदर से हमें जहन्नुम नजर आनी शुरू हो जाए, या ये कि आसमान जो है ना उस आसमान के ऊपर से एकदम से जो है ना वो एक एक, एक हाँ हाथी उड़ना शुरू हो जाए, उड़ता हुआ हाथी दिखा दीजिए आप हमें। अब ये क्या है, ये ऐसा है कि आप अपने दिमाग में जो चीज सबसे ज्यादा वियर्ड सोच सकते थे ना, सबसे ज्यादा अजीब और गरीब सोच सकते थे, वो आपने उनसे डिमांड कर ली, मुझे उड़ता हुआ हाथी दिखा दीजिए, है ना। तो बिल्कुल इसी किस्म की बात सालेह अलैहिस्सलाम से उन्होंने करी थी कि जी आप एक ऊँटनी पहाड़ में से निकाल के दिखा दी, ठीक है। सालेह अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी, तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह आपके लिए क्या मुश्किल काम है ये, आप दिखा दीजिए। तो अल्लाह ताला ने पहाड़ शक हुआ और उसके अंदर से गाभन ऊँटनी जो है वो निकल आई, ठीक है। तो पहले भी अकवाम ने इस तरीके से काम किए थे, मगर वो फिर भी ईमान ना लाए, क्योंकि मकसद उनका तो ये था ही नहीं कि हमें निशानी मिल जाएगी तो हम ईमान ले आएंगे। उनका तो मकसद था सालेह अलैहिस्सलाम को नीचा दिखाना, नाउज़बिल्ला जलील करना उनका मकसद था, ठीक है। तो जैसा इंसान का मकसद होता है उसके साथ वैसे ही मामला होता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने भी उनको ईमान की तौफीक नहीं दी। अच्छा, मुंह मांगे मौजज़े को देखने के बाद भी जो कौम ईमान से गुरेज करे उसके लिए अल्लाह का कानून ये है कि दुनिया ही में अजाब नाजिल करके खत्म कर दी जाती है, ठीक है। ये अल्लाह ताला का एक सिस्टम बना हुआ है, अल्लाह ताला ने सिस्टम्स बनाए इस दुनिया के 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 की जिंदगी के लिए, ठीक है। और ये कोई बहुत बड़े बड़े नहीं, बहुत ही सादा से सिस्टम्स के जिंदा रहने के लिए खाना खाना पड़ेगा। अब कोई ऐसे नहीं कह सकता कि मैं खाए बगैर जिंदा रहूंगा, अल्लाह का सिस्टम है, तुम्हारे अंदर एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अंदर ऊपर से न्यूट्रिशंस पड़ेंगी तब तुम्हारी बॉडी जो है ना उसके सेल्स बनेंगे, ब्लड बनेगा और फिर तुम चल सकोगे, और अगर ऊपर से तुम कुछ नहीं खाओगे ना तो नहीं चल सकोगे। ये अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है, ठीक है। बिल्कुल जिस तरीके से भूख और खाने का एक सिस्टम बनाया हुआ है, अल्लाह ताला ने बिल्कुल वैसे ही गुनाह और सवाब का भी सिस्टम बनाया हुआ है। गुनाह करोगे पिटाई होगी, है ना, अल्लाह की नाफरमानी करोगे जलील होगे, पिटाई होगी तुम्हारी। ये नहीं हो सकता कि तुम नाफरमानी करो और जलील ना हो, पिटाई ना हो, ये नहीं हो सकता, अल्लाह का सिस्टम है ये। नेकी करोगे तुम्हें नेकी का फायदा होगा, ये नहीं हो सकता कि तुम नेकी करो और तुम्हें नेकी का फायदा ना हो, फायदा तो तुम्हें होगा। लेकिन बस वही बात है कि जिस तरीके से गुनाह की पिटाई फौरन नजर नहीं आती, उसी तरीके से नेकी का फायदा भी फौरन नजर नहीं आता। होता तो है, जैसे आप खाना खाते हैं तो आपके बॉडी सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं ना, ब्लड सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं ना, लेकिन नजर आते हैं, नजर तो नहीं आते, ग्रोथ नजर तो नहीं आती, ग्रोथ तो आहिस्ता आहिस्ता हो रही होती है ना। 5 महीने के बाद बच्चा नजर आता है किसी को, अच्छा बड़ा हो गया भाई, इतना बड़ा हो गया, है ना। हालांकि माँ बाप के सामने वो रोजाना बड़ा हो रहा होता है और माँ बाप को अंदाजा ही नहीं होता, क्योंकि उनके सामने ये मामला हो रहा होता है। और जिसको 6 महीने के बाद नजर आता है या साल के बाद नजर आता है, उसको डिफरेंस नजर आ जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से नेकी का फायदा, वो भी रोजाना जो बंदा अपने आप को, हम दूसरे को तो फिर थोड़ी देर के बाद देखते हैं, अपने आप को तो हर वक्त देख रहे होते हैं ना, ठीक है। तो अपने अंदर जो तब्दीली आ रही होती है ना, वो हमें नजर नहीं आ रही होती। हाँ, कोई आपका खानदान वाला देखेगा, आपका कोई पुराना दोस्त देखेगा, वो अच्छा यार तुम तो बड़े बदल गए हो, तुम तो पहले ऐसी बातें नहीं किया करते थे, तुम तो पहले तुम्हारे इखलाक ऐसे नहीं हुआ करते थे, तुम तो पहले नमाज ही नहीं भी पढ़ा करते थे, अब तो तुम माशाल्लाह इतनी अच्छी नमाज पढ़ रहे हो, पहले तो तुम्हें कुरान पढ़ना आते ही था, अब तो माशाल्लाह तुम हाफिज़ कुरान बन चुके हो, है ना, अब तो तुमने ये कर लिया, अब तो तुमने वो कर लिया, है ना। तो बंदे को खुद अंदाजा नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो इसी तरीके से अल्लाह ताला का कानून ये है कि जब मुआवजा डिमांड करते हैं और फिर ईमान नहीं लाते तो अब पूरी कौम के ऊपर अजाब आता है। ठीक है, तो चूंकि उम्मत मरहुमा को हक ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एजाज में दुनिया के अजाब आम से महफूज कर दिया है, इसलिए उनको उनके मांगे हुए मौजजात दिखलाना मसलहत नहीं। ठीक है ना, यानी अल्लाह का कानून नहीं तब्दील होता, अल्लाह ने अपना कानून तब्दील नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने इनके मांगे हुए मौजजात को ग्रांट ही नहीं किया, इनको दिया ही नहीं। ठीक है, क्योंकि कानून कानून होता है ना, कानून ही बदला जाता। ठीक है, तो उम्मत मरहूमा यानी जिस उम्मत पर खुसूसी रहम फरमाया अल्लाह ताला ने, और ये रहम नबी अलैहिस्सलाम की निस्बत की वजह से, ठीक है, महबूब इलाही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिर यानी जो दुआएं हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कुर्बानियां हैं, ये हर एक से बढ़ करके हैं, सारे अम्बिया से बढ़ करके नबी अलैहिस्सलाम सलाम की शान है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियां और दुआएं हैं। ठीक है, तो इस उम्मत को एक तो अल्लाह ताला ने यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, और फिर बाकी हिकमतें भी तो होती है ना, एक तो ये नस्बत हो गई, एक मोहब्बत की बात हो गई, और एक होती है हिकमत की बात। तो हिकमत क्या कि अल्लाह ताला ने फैसला फरमाया हुआ था हमेशा से, ठीक है, कि ये आखिरी नबी होंगे, इनके बाद किसी नबी ने नहीं आना। ठीक है, तो अब जब नबी ने नहीं आना तो फिर नबुवत का काम कौन करेगा? भाई बंदों को तो हिदायत की जरूरत रहती है, रहेगी बंदों को, ऐसा तो नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने हिदायत दी, अब उसके बाद जो है वो खत्म, राइट। अब बंदे जो है ना वो सेल्फ सफिशिएंट हो गए, राइट, अब दे डोंट नीड समवन टू कम एंड टेल देम व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, राइट। अल्लाह ने बंदे तो ऐसे बनाए नहीं, बंदों का डिजाइन तो ऐसा बनाया ही नहीं। ठीक है, तो बंदों को तो हिदायत की नीड रहेगी, भाई जब हिदायत की नीड रहेगी, जरूरत रहेगी, तो हिदायत का सिलसिला भी तो चलना चाहिए ना, बताने वाले भी तो चलने चाहिए ना। नबी का सिलसिला खत्म हो गया लेकिन नबी का काम तो खत्म नहीं हुआ ना। ठीक है, तो काम किसने करना है? नबी वाला, उम्मत ने करना है ना? तो अगर उम्मत को तबाह कर देंगे तो फिर ये काम कौन करेगा भाई? ठीक है, तो उम्मत को जो है ना वो इज्तिमाई शक्ल में इस तरीके से तबाह नहीं किया, और उसके लिए अल्लाह ताला ने इनकी डिमांड्स को पूरा ही नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए उनको उनके मांगे हुए मौजजात दिखलाना मसलहत नहीं। आगे अफहुम युमिनून में इसी तरह इशारा है कि क्या मुंह मांगे मौजजे को देखकर ये ईमान ले आएंगे? मुराद ये है कि इनसे इसकी कोई तवक्को नहीं की जा सकती, इसलिए मतलूबा मौजजा नहीं दिखाया जाता। ठीक है, तो बस अलू अहल जिक्र इन कुंतुम ला तालमून। तो अब उसके आगे ये लोग फिर एक और एतराज करते थे कि जी हाँ कि ये किस किस्म के नबी हैं, है ना, मा 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 ले हाजर रसूल याकुलून तआम व यमशी फिल असवाक, सूरह फुरकान के अंदर जो आयात हैं, कि ये लोग कहते थे कि ये किस किस्म के रसूल है भाई, मा ले हाजर रसूल, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस रसूल, है ना, कि याकुलून तआम व यमशी फिल असवाक, कि ये तो खाना भी खाते हैं और बाजारों के अंदर चलते फिरते हैं, है? ये किस किस्म के रसूल है? अल्लाह का रसूल होता तो उसको खाने की क्या जरूरत है? अल्लाह का रसूल होता तो उसको वो आम इंसानों की तरह बाजारों में चलता फिरता क्यों है, यानी हमारी गलियों के अंदर हमारे दरमियान ऐसे क्यों चलता फिरता है जिस तरह से कि दूसरे इंसान चलते फिरते हैं? ठीक है, तो इस किस्म के जो एतराजात होते थे तो उनके ऊपर अल्लाह ताला ने जवाब दिया यहाँ पर कि नहीं, वमा अरसलना कबला का इल्ला रिजालन, कि हमने कोई भी रसूल पहले भी नहीं भेजा सिवाय कि वो बंदा था, रिजाल था यानी मर्द था। ठीक है, औरतों में अल्लाह ताला ने ये वाली जिम्मेदारी नहीं डाली, जिस तरह औरतों पे कमाने की जिम्मेदारी नहीं डाली ना अल्लाह ताला ने, उसी तरीके से औरतों पे अल्लाह ताला ने नबुवत की जिम्मेदारी, नबुवत का बोझ हमारे यानी इस दौर के अंदर जिसको फेमिनिज्म का दौर कहा जाता है, तो अल्फाज की हकीकत बदल करके ना बंदे को कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो अब कमाना और हुकूमत करना, इसको जो है वो प्रिविलेज के तौर पर पेश किया जाता है कि जी ये आपकी प्रिविलेज है, ठीक है ना, कि आप कमाएं और आप जो है वो यानी लीडर ही करें, ये प्रिविलेज है, ठीक है। इसी वजह से फिर एक दूसरे का गला काटते हैं भाई। औरतों की बात तो आप साइड पे करें, मर्द जब लीडरी को प्रिविलेज समझना शुरू कर देते हैं, एजाज समझना शुरू कर देते हैं, तो फिर जाहिर है उस एजाज को हासिल करने के लिए तो आपने कुछ ना कुछ करना है ना, है ना। अगला बंदा जो नजर आ रहा है कि जी वो लीडर बनने जा रहा है, तो अब आपने उसके रास्ते को काटना है, किसी तरीके से उसको हराना है, उससे लड़ाई करनी है, उसको उसको जेर करना है ताकि आप लीडर बन जाए, है ना। आप सारी दुनिया में देखने, खाली हमारे मुल्क में नहीं, सारे सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के अंदर नहीं, हर मुल्क दुनिया में लीडरी के लिए किस किस किस्म की करप्शन होती है। गोरे तो हम हमें बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन होता नहीं है वहां पे, इतनी करप्शन होती है कि हमें अंदाजा ही कोई नहीं है, है ना। लेकिन वो बड़े बड़े प्यार से करप्शन करते हैं असल में, वो बड़े ना वो यानी क्या कहते हैं, मीठी छुरी के तरीके से करप्शन करते हैं। इस वजह से हम समझते हैं कि जी उनके यहाँ तो बड़ा सच्चे लोग रहते हैं, उनके यहाँ तो बड़ा जबरदस्त डेमोक्रेसी का सिस्टम है और इलेक्शन होता है और क्योंकि किसी किस्म का कोई धांधली नहीं होती और सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक होता है। लेकिन ये हमारी निगाहों का धोखा है, हमें पता ही नहीं असल में हकीकत क्या है वहाँ, ठीक है। तो यानी लीडरी के लिए मारपीट और धोखादही और ये सब कुछ सारी दुनिया में चल रहा होता है, लेकिन इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि लीडरी को आपने एक एजाज और मर्तबा और प्रिविलेज समझ लिया है, ठीक है ना। हालांकि लीडरी जो होती है ये तो इतना बड़ा बोझ होता है कि जितना यानी इससे बड़ा कोई बोझ नहीं है, क्योंकि लीडर जो होता है अवाम का, वो पूरी अवाम के अमाल का जवाबदेह होता है अल्लाह ताला के सामने, ठीक है ना। तो उस यानी कौन यानी अपनी राइट माइंड के अंदर कौन इतना बड़ा जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होगा। लेकिन जाहिर है माइंड राइट रहता ही नहीं है, माइंड ही खराब हो जाता है, तो इस वजह से फिर कहते हैं कि नहीं जी मुझे बना दो, मुझे सदर बना दो, मुझे वजीर आजम बना दो, मुझे गवर्नर बना दो, ठीक है। तो सोच को उलट दिया ना, सोच उलट दी, लफ्ज की हकीकत को उलट दिया, जिम्मेदारी की बजाय प्रिविलेज बना दिया, ठीक है। उसी तरीके से कमाना ये जिम्मेदारी थी कि जी आपने पूरे घर का बोझ उठाना है, आपने प्रोवाइड करना है, बीवी को भी प्रोवाइड करना है, आपने बच्चों के लिए भी प्रोवाइड करना है, आपने तालीम और तरबियत का भी इंतजाम करना है, ये सारा का सारा बोझ अल्लाह ताला ने मर्द पे डाला था, ठीक है। लेकिन इस प्रोवाइडर की का जो लफ्ज है, इसकी मफहूम को तब्दील कर दिया और उसको एक प्रिविलेज बना दिया। हाँ जी मैं भी कमाती हूँ, मैं भी कमाता हूँ और मुझे अय्याशी करूंगा, जितना मेरे पास पैसे आएंगे तो उतना मैं अय्याशी करूंगा। भाई अय्याशी के लिए आपको इस दुनिया में भेजा ही नहीं था अल्लाह ताला ने, दुनिया में तो भेजा ही किसी और काम के लिए था, है ना। वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने जिन्नों और इंसों को जो है वो इबादत के लिए भेजा है, यानी अल्लाह ताला के सामने अपने आप को सबमिट करके अल्लाह ताला के हुक्मों की अतात करने के लिए दुनिया में भेजा था, अय्याशी करने के लिए को थोड़ी भेजा था। लेकिन शैतान ने अय्याशी बना दिया, तो अब इस वजह से जितना पैसा आएगा उतनी अय्याशी करेंगे, जितनी फ्रीडम सो कॉल्ड फ्रीडम आएगी उतनी अय्याशी कर सकेंगे, ठीक है ना। तो अब जब अय्याशी बन गया मफहूम, कमाने का मफहूम अय्याशी बन गया, तो उसके बाद नहीं जी मुझे भी कमाना है, मुझे जो जो ट्रेडिशनली जो जिम्मेदारियां मेरे ऊपर थी वो तो मैं पूरी करूंगी नहीं, मैं तो कमाऊंगी, ठीक है। तो अब जब कमाने का मफहूम बन गया, तो अब उसकी उसकी बुनियाद पर जो मुआशरा बन रहा है, अब वो मुआशरा ऐसा बन गया है कि तसव्वुर ही कोई नहीं। ये कैसे हो सकता है जी कि औरत ना कमाए, ये कैसे हो सकता है जी कि खाली मर्द कमाए, ये तो सबको कमाना चाहिए। तो माशाल्लाह फिर बड़े मजे आ रहे हैं उसके बाद फिर सबके, ठीक है, कि ये सारे ही कमा रहे हैं और खुश कोई भी नहीं होता, खर्चे फिर भी पूरे नहीं होते, है ना। और घर के अंदर जो है ना वो सारा का सारा घर का निजाम बर्बाद और खानदान का निजाम बर्बाद, और वो तो फिर वो शैतान के तो मजे आ रहे हैं इसके अंदर के इंसान के इंसानियत के साथ क्या मैंने कर दिया, कितना बड़ा मैंने अचीव कर लिया अपना गोल। क्योंकि मेरा गोल शैतान ही कहता है ना, मेरा गोल तो था इन लोगों को जहन्नम में डलवाना, और वो गोल जो है वो मैं अचीव कर रहा हूँ उनके जरिए से। क्या लिखा आपने, सहाबा के वाकयात पढ़कर ताज्जुब होता है कि वो पोजिशन से बचने की कोशिश करते थे। जी एक सहाबी ने भोलेपन के अंदर, अपनी सादगी के अंदर नबी अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि ऐ अल्लाह के नबी, आप मुझे नहीं बनाते, आप दूसरों को बना बना के भेज रहे हैं, किसी को यमन भेज दिया, किसी को जो है वो शाम भेज दिया आमिल बना करके, किसी को आपने उधर भेज दिया आमिल बना करके, अब मुझे क्यों नहीं आमिल बना रहे। अबू जर गफ्फारी गालबन थे, तो नबी अबू जर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तुम नहीं उठा सकते, है ना, तुम बात ना करो इस तरह की। किसी और ने नबी अलैहिस्सलाम से ऐसा डिमांड नहीं किया था, ऐसे यानी ऐसी बात नहीं करी थी। ये इंतहाई जो था ना कि इन्होंने किसी और नीयत से इस बात को देखा कि ये अगर मुझे आमिल बना दिया जाएगा तो मैंने सुना है नबी अलैहिस्सलाम से कि अवाम जो नेकी का काम करती है उस नेकी का सवाब आमिल को मिल रहा होता है, यानी जो ऊपर अमीर बैठा होता है ना, नीचे वालों की नेकियों का सवाब उसको मिल रहा होता है। तो मैं करूंगा इस तरीके से कि नेकियों का सवाब मुझे मिल जाए, ठीक है। तो इनकी नीयत ये होगी, क्योंकि सहाबी थे ना, और सहाबी की इस्लाह तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दी थी, ठीक है, लेकिन भोले भाले थे, सीधे साधे थे, उन्होंने इस किस्म की डिमांड करी, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी डिमांड को पूरा नहीं किया, उनकी इस बात को पूरा नहीं किया, बल्कि उनको समझा बुझा करके बिठा दिया, नहीं नहीं तुम नहीं कर सकते हो काम, हर बंदा इस काबिल नहीं होता, ठीक है। वरना उमूमी तौर पर सहाबा का यही था कि नहीं जी, हमें अगर काजी बना दिया, वो है ना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह कौल, या किसका कौल है, हदीसे मुबारक है अरबन के, जो जिसको काजी बना दिया गया उसको तो बगैर छुरी के जबा कर दिया गया है ना, कि यानी छुरी की भी जरूरत नहीं है उसको जबा करने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर तो पूरी कौम का बोझ पड़ गया है, उससे तो हिसाब लिया जाएगा कि तुमने किस किस्म के फैसले किए, क्या किया तुमने, मजलूम को हक दिलवाया कि नहीं हक दिलवाया, ठीक है। इतना जवाब देने की हमारे पास है हिम्मत कि हम पूरी कौम का जवाब दे सकें। बिल्कुल परसेप्शन ऑफ रियलिटी जो होती है ना, वो शैतान बदल देता है आकर के, दीन की दी हुई परसेप्शन, दीन की दी हुई समझ बूझ बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, और शयातीन की दी हुई समझ बूझ बिल्कुल उसके बरअक्स होती है। तो फसअलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, तो यहाँ पर फरमाया कि तुम यानी तुम लोग पूछ लिया करो अहलु ज़िक्र से अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो वही जो लोग कहते थे कि जी फरिश्ते क्यों नहीं भेजे, तो अल्लाह ताला ने कहा कि हमने कभी फरिश्ते भेजे ही नहीं है। तो अहलु ज़िक्र से मुराद इस जगह उलमाए तौरात व इंजील है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए थे। मतलब ये है कि अगर तुम्हें पिछले अंबिया का हाल मालूम नहीं कि वो इंसान थे या फरिश्ते, तो उलमाए तौरात व इंजील से मालूम कर लो, क्योंकि वो सब जानते हैं कि सब अंबिया साबिकीन इंसान ही की नौ से थे, यानी इंसान ही की नस्ल में से थे, इंसान ही की टाइप में से थे, वो कोई नॉन ह्यूमंस नहीं थे। इसलिए अगर यहाँ अहलु ज़िक्र से मुतलक अहल किताब यहूद व नसारा मुराद हो तो बईद नहीं, क्योंकि इस मामले के सभी शाहिद हैं। कि क्या मतलब कि अहले किताब से पूछ लो जा करके, क्योंकि उनके पास किताब का इल्म है, ठीक है। बच्चों की क्लास में भी सैटरडे को बात हुई थी ना कि जी मदीना मुनव्वरा के अंदर जो अरब कबीले थे औस और खजरज, तो ये लोग तो बस अपने खेती बाड़ी के अंदर और मवेशी वगैरह का काम इन सब के अंदर लगे रहते थे, और हर थोड़े दिन के बाद फिर वो लड़ना शुरू हो जाते थे एक दूसरे से, है ना, फिर वो कत्ल खूब कत्ल वगारत होता था, फिर उसके बाद ठंडे होकर बैठ जाते थे, फिर थोड़ी दिन के बाद लड़ना शुरू हो जाते थे। तो अरब कबीलों का तो यही हाल था, जैसे आज आप अरब बच्चों को देख लें तो उनसे बैठा नहीं जाता वो, और वह कुछ ना कुछ फाइटिंग आपस में होती रहती है, ठीक है। लेकिन जो यहूदी कबीले यहाँ पर शाम से आकर के सेटल हुए थे, तो ये अहले इल्म थे, ठीक है ना, इनके अंदर बड़े बड़े स्कॉलर्स ऑफ टोरा एंड बाइबल मौजूद थे इनके अंदर, ठीक है। तो ये अहले इल्म थे, तो यहाँ पर जो फरमाया फसअलु अहल ज़िक्र कि तुम अहले इल्म से पूछ लो, तो इससे मुराद सारे यहूदी भी हो सकते हैं जो वहां पर मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे, और इससे मुराद जो है वो सिर्फ वो यहूदी भी हो सकते हैं जो कि मुसलमान हो, ठीक है। दोनों चीजें दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। खुलासे तफसीर के अंदर हमने पढ़ा था कि इससे मुराद जो है वो सारे अहले किताब हैं, चाहे वो मुसलमान हैं चाहे वो काफिर हैं, ठीक है, क्योंकि इस किस्म की बात पूछने के लिए आप काफिरों पर भी पर भी ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बात कोई बहुत ही कोई ढकी छुपी किस्म की बात नहीं, ये तो यानी बहुत ही वेल नोन किस्म की बात है कि सारे नबी जो हैं वो इंसान हुआ करते थे, ठीक है, फरिश्ता नहीं हुआ करते थे। तो आप काफिर से भी ऐसी बात पूछ सकते हैं जो कि वेल नोन हो, ठीक है, और खाली मुसलमान अहले किताब भी मुराद दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे वही लिख रहे हैं, खुलासे तफसीर में इसी एहतमाल को इख्तियार करके तशरीह की गई है कि काफिर से भी आप इस किस्म की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मसला तफसीर कुर्तुबी में है कि इस आयत से मालूम हुआ कि जाहिल आदमी जिसको अहकाम शरीयत मालूम ना हो, ठीक है, अब हमारे यहाँ आपको पता है कि जाहिल का जो लफ्ज़ है ये यानी बतौर गाली के इस्तेमाल किया जाता है, या किसी को आप इस तरह सख्त सुस्त कह दें या कुछ इस किस्म की और कोई बहुत ही गंदी किस्म की बात कह दें, तो उसी तरीके से किसी को जाहिल कहना भी जो है ना वो बहुत ही बड़ा ऑफेंस लिया जाता है, ठीक है। लेकिन इस लफ्ज की हकीकत जो है ना वो ऐसा है नहीं, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप किससे बात कर रहे हैं और किस सोशल स्ट्रक्चर के अंदर आप किसी को जाहिल कह रहे हैं, ठीक है। तो लफ्ज जाहिल जो है वो जब आप दीनी टेक्स्ट पढ़ते हैं ना, दीनी किताबें पढ़ते हैं, तो वहां पर जो लफ्ज जाहिल है ना ये बतौर गाली के इस्तेमाल नहीं किया जाता, बतौर स्वेयर वर्ड के इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इट सिंपली मीन्स कि जिसके पास अहकाम शरीयत का इल्म नहीं है, दीन का इल्म नहीं है, तो उसको जाहिल कहा जाता है, ठीक है। और इसका यानी और इस लफ्ज का इस्तेमाल करने का मकसद उसको जो है वो जलील करना नहीं होता, बल्कि इसको इस्तेमाल करने का मकसद ये होता है कि भाई आपको इल्म नहीं है, आप सीख लीजिए, क्योंकि इल्म हासिल करना तो फर्ज है, जरूरी जो जो मामलात हैं उनका इल्म हासिल करना फर्ज है, तो भाई आप अभी जाहिल हैं, आप आलिम बन जाइए, आपको किसी ने रोका तो नहीं है, ठीक है, जरूरी मामलात का इल्म हासिल कर लीजिए, ये नहीं कि आलिम दीन बन जाइए और आप जो है वो यानी 8 साल मदरसे में जाकर के पढ़ लिख करके जो है वो बहुत बड़े यानी अफलातून बन जाए, नहीं ये नहीं, बल्कि जरूरी बातों का इल्म हासिल कर लीजिए, ठीक है, जिसका करना कि वैसे भी आपके ऊपर फर्ज है, ठीक है। इस वजह से लफ्ज जाहिल जो है ना वो यहाँ पर जलील व रुस्वा करने के माने में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। तो जो जाहिल आदमी है, ठीक है, जिसके पास अहकाम शरीयत का इल्म नहीं है, उस पर आलिम की तकलीद वाजिब है कि आलिम से दरियाफ्त करके उसके मुताबिक अमल करे, ठीक है, पूछ ले भाई, जिस तरह तुम दुनिया के सारे मामलात में जो भी जिस फील्ड का आलिम होता है तुम उस फील्ड के आलिम से पूछ करके अपने मामलात करते हो, तो भाई दीन में भी ऐसे ही है, ठीक है। अगर तुम्हारी गाड़ी खराब हो जाती है और तुम्हें गाड़ी को ठीक करना नहीं आता है तो तुम मोटर मैकेनिक के पास जाते हो, मोटर मैकेनिक गाड़ी का आलिम है, ठीक है, वहां पे तुम्हें कोई कोई शर्म महसूस नहीं होती, तुम्हें कोई कोई यानी रुकावट नहीं होती कि भाई मैं कैसे किसी दूसरे से जाकर के पूछूं, है ना, ये तो मेरे लिए यानी मैं तो बड़ा यानी मैं तो वाइट कॉलर वर्कर हूं और मैं तो बड़े ऑफिस के अंदर मैनेजर हूं, मैं कैसे जाकर के किसी मोटर मैकेनिक वाले से पूछूं कि मेरी गाड़ी कैसे ठीक होगी, नहीं, किसी किस्म की कोई आपको शर्म महसूस नहीं होती, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पास ये इल्म नहीं है, ठीक है। हालांकि हर किताब हर गाड़ी जो आती है तो उसके साथ एक अच्छा खासा मोटा एक 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 यूजर मैनुअल होता है, और यूजर मैनुअल के अंदर अच्छी खासी डिटेल मौजूद होती है गाड़ी के फंक्शनैलिटी के बारे में, तो आप उस यूजर मैनुअल को पढ़ पढ़ करके जो है वो गाड़ी को ठीक करने की कोशिश नहीं करते, ठीक है ना, बिल्कुल उससे भी ज्यादा बढ़ करके जब आप बीमार पड़ते हैं और बीमारी जो होती है वो आपकी जरा क्रिटिकल नौयत की होती है, जरा आपको ज्यादा दर्द होना शुरू हो गया, ज्यादा कोई आपको नींद का मसला हो या पेट खराब हो गया, ज्यादा बढ़ गया, तो आप जो है वो डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां पे शर्म महसूस नहीं करते कि जी डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हैं, ठीक। हालांकि डॉक्टरी की किताबें आपको आजकल तो इंटरनेट पर मौजूद है, पहले तो चलो दुकानों में जाके खरीद के लानी पड़ती, ठीक है, लेकिन अब तो इंटरनेट के ऊपर सारी की सारी मौजूद है, तो आप ये नहीं करते कि जी आप किताबें पढ़ करके खुद अपना इलाज करने की कोशिश करें, ठीक है। दीन के अंदर ऐसी कौन सी बात है कि जिसमें समझते हैं हर बंदा तो अपने आप को आलिम समझ रहा है, हर बंदा समझ रहा है कि नहीं मैं पढ़ करके खुद ही सीख लूंगा और खुद ही सब कुछ कर लूंगा, ठीक है, तो ये यानी वही अकल का मसला है, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। जब आपको किसी चीज का पता नहीं है तो जिनको पता है उनसे जाकर के पूछ लें, ये अल्लाह ताला का हुक्म भी है। ठीक है, तो इस आयत के बारे में जो जो उसूल तफसीर का उसूल है वो ये है कि ये आयत जो है ना, ये इसके अंदर हुक्म जो है ना वो हुक्म आम है, अगरचे कि इस आयत का शान नुजूल वो वाकया है कि जब यहूदियों ने कहा इस किस्म की डिमांड करी तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की तरफ से ये जवाब दिया कि तुम अहले किताब से जाके पूछ लो। ठीक है, लेकिन इस हुक्म को सिर्फ इसी वाकये के अंदर आप कैद नहीं कर सकते, मुकैद नहीं कर सकते, क्योंकि ये हुक्म अल्लाह की किताब का है और ये हुक्म आम है। ठीक है, जैसे कि पर्दे का हुक्म अजवाज मुतहरात के लिए आया है ना, अपनी आवाज़ों को कम करो और जो है वो मिन वराए हिजाब तुम लोगों से बात करो। ठीक है, तो अब जैसे कि बहुत सारी औरतें कहती हैं कि भाई, यानी जिन्होंने थोड़ा बहुत कुरान शरीफ का तर्जुमा वर्जुमा पढ़ लिया होता है ना, तो वो कहती हैं वो जो हुक्म आया था वो तो उम्मतुल मोमिनीन के लिए आया था, हमारे लिए कोई थोड़ी आया था, इस वजह से हमें कोई थोड़ी पर्दा करने की जरूरत है, हमें कोई थोड़ी हिजाब के पीछे से बात करने की जरूरत है ना, वो तो उस कॉन्टेक्स्ट में आया था, वो उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर अप्लाई करो बस। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पर्दे का हुक्म जो है, अच्छा बाकी अहादीस और इन सब से भी चीजें वाजे होती हैं। ठीक है, तो भाई हुक्म आम है और ये हुक्म जो है अहादीस का खाली का हुक्म नहीं है, अहादीस के अंदर आया हुआ हुक्म नहीं है, बल्कि कुरान की आयत में भी, अगर आपको अहादीसों के साथ कोई मसला है तो भाई ये कुरान का हुक्म है। ठीक है, तो उसी तरीके से बाकी अहकाम के बारे में भी यही होता है। ठीक है, तो आलम की तकलीद वाजिब है। अच्छा, अब लफ्ज तकलीद का मतलब क्या है, जो लफ्ज तकलीद है इसका क्या मतलब है, इसका जो लफ्जी मफहूम है ना, लफ्जी मफहूम वो तो है कि पीछे पीछे चलना। ठीक है, तो यानी लफ्जी मफहूम एक होता है और एक होता है इस्तिलाही मफहूम। ठीक है, इस्तिलाही मफहूम क्या है, यानी शरीयत की इस्तिलाह में तकलीद किस चीज को कहते हैं, तकलीद का मतलब होता है कि जब आपको किसी चीज का पता नहीं है तो आप उस मामले के जो अहले इल्म है, आलिम है, उनसे पूछें। ठीक है, अब आपने जब उनसे पूछ लिया, ये तकलीद नहीं है, ये तो सवाल करना है, फसअलू। ठीक है, जब आपको नहीं मालूम आप सवाल कर लें, वो आपको जवाब दे देंगे, ये तकलीद नहीं है। तकलीद क्या है फिर, तकलीद ये है कि जब उन्होंने आपको जवाब दे दिया ना, ठीक है, तो अब आप उनसे प्रूफ नहीं मांगे कि नहीं, यू बेटर प्रूव इट टू मी फर्स्ट, आप इसके दलाइल बताएं कि ये आपने जो मुझे जवाब दिया है तो ये किस बुनियाद पर आपने जवाब दिया है, ये मुझे बताएं, तब मैं आपकी बात मानूंगा, वरना मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। ठीक है, तो प्रूफ नहीं मांगना, दलील नहीं मांगना, ये तकलीद है। ठीक है, तो अगर आप दलील मांगना शुरू हो जाएं आलिम से, एक्सपर्ट से, तो वो तकलीद नहीं होगी। ठीक है, वो क्या होगा फिर, अगर आप एक्सपर्ट से प्रूफ मांगना शुरू कर दें, ठीक है, सवाल का जो जवाब उन्होंने दिया आपको, या कोई प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बताया, अब आप उनसे पूछेंगे नहीं ये तरीका सही तरीका है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, ये गलत तरीका है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, आप प्रूफ करें मुझे पहले। ठीक है, तो ये फिर क्या कहलाएगा, ये तकलीद नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये दो में से कोई एक चीज कहलाएगी, एक तो ये कि या तो आप उन आलिम के साथ ना बस एक खेल कर रहे हैं, एक एतराज कर रहे हैं आप उनसे, ठीक है ना, कि जी आप मुझे पहले प्रूफ करें। ठीक है ना, हाँ तनकीद, ये तनकीद कहलाएगा, जजाकल्ला बहुत अच्छा आपने लफ्ज दिया, तो ये या तो तनकीद कहलाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है तनकीद, हो सकता है तनकीद हो डिपेंडिंग ऑन योर नीयत। ठीक है, दूसरी क्या चीज हो सकती है, दूसरी चीज जो है वो ये होगी कि आप इल्म हासिल कर रहे हैं, राइट, आप जो है ना वो, यानी आप तरीका सीख रहे हैं, और आप ऑब्वियसली जब आप इल्म हासिल कर रहे होते हैं तो अब आपको जो है वो सोर्सेस का भी पता होना चाहिए कि जी ये जो फलाना हुक्म आया तो इसका सोर्स क्या है, फलाना हुक्म आया तो उसका सोर्स क्या है, है ना, उसकी दलील क्या है, उसकी दलील क्या है, उसकी दलील, यानी बेसिकली आप आलिम बनना चाह रहे हैं, आप खुद एक्सपर्ट बनना चाह रहे हैं। तो इस वजह से आप ये दलाइल पूछ रहे हैं, प्रूफ पूछ रहे हैं, ठीक है। तो दो में से कोई एक चीज हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द नियत, ठीक है। तो बंदे की नियत है खुद आलिम बन जाए तो फिर वो इस किस्म के प्रूफ पूछेगा, या दूसरी ये है कि नहीं आलिम तो नहीं बनना चाहता, बस तनकीद करना चाहता है, बस इतराज करना चाहता है, बस कीड़े निकालना चाहता है, इस वजह से वो प्रूफ पूछ रहा है, ठीक है। तो ये तकलीद नहीं होती। तकलीद ये होती है कि आपने पूछा और ट्रस्ट करते हुए आपने उस चीज के ऊपर अमल कर लिया, ठीक। तो यहां पर इस आयत के तहत जो हुक्म लिखा हुआ है या जो मसला लिखा हुआ है वो क्या है कि जो गैर आलिम होते हैं, गैर आलिम कौन होते हैं भाई, गैर आलिम जो होते हैं, ये सवाल वैसे मेरा है गैर आलिम कौन होते हैं, ठीक है। लेकिन जो मसला है वो ये है कि जो गैर आलिम होते हैं तो उन पर आलिम की तकलीद वाजिब है, वाजिब, ठीक है। यानी ये कोई उनकी चॉइस नहीं है, ये उनके लिए नफिल नहीं है, बल्कि तकलीद करना जो है वो वाजिब है, ठीक है। और वाजिब उस अमल को कहते हैं कि जो नहीं किया जाए तो फिर गुनाह मिलता है, ठीक है। वाजिब की ये डेफिनेशन है। मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ना वाजिब है, एक तो ये ना नमाज पढ़ना फर्ज है भाई, यहाँ पे वाजिब का मतलब फर्जी है, ठीक है। तो वाजिब का मतलब ये मैंडेटरी है, ठीक है। तो जब आप फराइज पूरी नहीं करते तो फिर आपको सजा मिलती है, तकलीद वाजिब है, सही है। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि गैर आलिम होता कौन है, किसी के सर के ऊपर वो ताज जैसे, यानी क्या कहते हैं, मेल फीमेल के दरमियान जो जो फर्क होता है, तो क्या आलिम और गैर आलिम के दरमियान इसी तरह का फर्क होता है, जैसे हमारे यहाँ माशाल्लाह बर्ड्स बच्चों के लिए फिंच लेकर के हैं, फिंचेस, ठीक है। तो जो मेल फिंच होती है ना, तो उसकी जो उसकी उसकी कलर डिफरेंट होता है, उसकी चोंच डिफरेंट होती है, और जो फीमेल फिंच होती है जो उसका कलर और उसकी चोंच डिफरेंट होती है, तो क्या आलिम और गैर आलिम के दरमियान भी यही फर्क है कि जी इसके सर के ऊपर कुछ वो, यानी इसके बाल कुछ खास शक्ल के होते हैं, या इसके जो है वो आवाज़ कोई खास शक्ल की होती है, और जो गैर आलिम होता है उसकी आवाज़ ऐसी होती है, और इसका क्या क्या फर्क है आलिम में और गैर आलिम में, बिसाइड्स द फैक्ट कि उसको इल्म होता है, उसको इल्म नहीं होता। ये तो लफ्जी तर्जुमा हो गया ना, लफ्जी फर्क हो गया, वरना फर्क क्या होता है आलिम में और गैर आलिम। आलिम के पीछे शेख होता है, आलिम के पीछे शेख होता है, यानी आलिम आगे आगे चलता है, शेख उसके पीछे पीछे चल रहा होता है, नहीं है तो कोई बात समझ नहीं। या आलिम के बैकिंग पे कोई शेख होता है, नहीं ऐसा भी कोई नहीं होता। तो आलिम कौन होता है, गैर आलिम कौन होता है, सनद, सनद हस्पताल जो रियाज के अंदर होता है, सनद खाली लफ्ज सनद से तो नहीं पता चलता, बोलते आलम में और गैर आलम में फ़र्क क्या होता है, वक्त भी कम है तो आलम के पास सनद होती है जो अमल भी करता है। नहीं नहीं ये आलम जो है ना उसको कहते हैं कि जिसने अपना वक्त डेडिकेट करके मरकूज करके कोई इल्म हासिल किया होता है वो उस फील्ड का आलम होता है, ठीक है ना, जिसने के अपने दूसरे मशागिल को सानवी हैसियत दी और इस फील्ड का इल्म हासिल करने को प्राइमरी हैसियत दी, वो आलिम बन जाता है, ठीक है। अब ये डॉक्टरी के अंदर भी यही चीज होती है, इंजीनियरिंग के अंदर भी यही चीज होती है, लॉ के अंदर भी यही चीज होती है, मेडिसिन और यानी हर फील्ड के अंदर यही उसूल है, दीन के अंदर भी यही उसूल है, ठीक है। जिन्होंने अपने दूसरे मशागल को जो है ना, दूसरे मशागल से मतलब दूसरे जो 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 एजुकेशन हासिल कर रहे थे या दूसरा जो है जो जो कमाई का उनका जरिया था, उन सब चीजों को जरा सानवी हैसियत दी, सेकेंडरी हैसियत दी, और इस फील्ड का इल्म हासिल करने को प्राइमरी हैसियत दी। इस तरीके से उन्होंने इस फील्ड का इल्म हासिल कर लिया, ठीक है, जिसको कह जरा ये भी कह देते हैं कि जी फुल टाइम इल्म हासिल किया, फुल टाइम यानी तवज्जो के साथ, फोकस के साथ, ठीक है, इल्म हासिल किया तो वो आलिम बन जाता है, ठीक है। अब यहां पर اتنی ہی تعریف کافی ہے. اب اس کے اندر آپ گھنٹے گننا نہ شروع کر دیں کہ جی دن میں جو ہے نا وہ اتنے گھنٹے اگر لگاتا تھا اس علم حاصل کرنے میں تب وہ اس فیلڈ کا عالم کہلائے گا, اور اگر اتنے گھنٹے سے کم گھنٹے لگاتا تھا تو وہ اس فیلڈ کا عالم نہیں کہلائے گا. نہیں, یہ گھنٹے شنڈے کی بات نہیں ہے, یہ نیت اور ارادے کی بات ہے, ٹھیک ہے, اور یعنی جس کو ڈیڈیکیشن بھی کہتے ہیں, نیت, ارادہ, ڈیڈیکیشن, ٹھیک ہے. تو جس نے اس طریقے سے کسی فیلڈ کا علم حاصل کر لیا وہ اس فیلڈ کا عالم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو دین کے اندر بھی ایسے ہی ہے, جس نے ایسا نہیں کیا بلکہ پارٹ ٹائم ایسے ہی بس ادھر سے کچھ پڑھ لیا ادھر سے کچھ پڑھ لیا, اور یعنی ایسے ہی بس جس کو کہتے ہیں نا پک اینڈ چوز کرتے رہے ادھر سے ادھر سے, تو وہ پھر وہ عالم نہیں بنتا, ٹھیک ہے. عالم بننے کے لیے اس کو کسی ترتیب, پراپر ترتیب کے ذریعے سے, ٹھیک ہے, جو جس نے علم حاصل کیا تو وہ اس فیلڈ کا عالم کہلا, اور دین کے اندر بھی بالکل ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. تو اب جو جس نے ایسے علم حاصل نہیں کیا ہے نا تو وہ غیر عالم کہلائے گا, اور اس کے اوپر عالم کی تقدیر جو ہے وہ واجب ہے. باقی اس کی بہت ساری تفصیل کی جا سکتی ہے, لیکن ساری باتیں تو ایک مجلس میں نہیں کی جا سکتی, تو اس وجہ سے ہم آگے بڑھتے ہیں تاکہ ان آیات کو کم از کم مکمل کر لیں آج کی کلاس کے اندر. کہ یہ جو آخری آیت تھی آیت نمبر 10, اس میں فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون, کہ تحقیق کے ہم نے نازل کیا تمہاری طرف ایک کتاب جس میں تمہارا ذکر ہے, کیا تم سمجھتے نہیں اس بات کو, کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے, افلا تعقلون. تو اس کی تفسیر میں جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر تھی خلاصہ تفسیر میں جو ہم نے پڑھی وہ کیا تھی, کہ ہم تمہارے پاس ایسی کتاب بھیج چکے ہیں کہ اس میں تمہاری نصیحت کافی موجود ہے, کیا باوجود ایسی تبلیغ موعظت کے پھر بھی تم نہیں سمجھتے اور نہیں مانتے, یعنی کافی شافی نصیحت اس کے اندر ہے پھر بھی تم نہیں مانتے اس بات کو, ٹھیک ہے. تو یہ ایک تفسیر ہے اس کی کہ لفظ ذکر سے مراد نصیحت, ٹھیک ہے. یہاں پر مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے جو تفسیر نقل کی ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے, ٹھیک ہے. وہ کیا ہے کہ کتاباً فیہ ذکرکم, کتاب سے مراد قرآن ہے, یہ تو متفقن علیہ ہے نا, سب اس کو قرآن ہی کہتے ہیں, کتاب قرآن, اور کوئی کتاب یہاں پہ تورات مراد نہیں ہے, کوئی انجینئرنگ کی اور کوئی سائنس کی کتاب مراد نہیں ہے, بلکہ قرآن مجید مراد ہے, ٹھیک ہے. تو کتاب سے مراد تو قرآن ہے, اور ذکر, لفظ ذکر کے اوپر علمی اختلاف علماء کے درمیان رہا ہے اس آیت کے تحت, ٹھیک ہے. وہ کیا کہ ذکر اس جگہ بمانی شرف و فضیلت اور شہرت کے ہے, ٹھیک ہے. مراد یہ ہے کہ یہ قرآن جو تمہاری زبان عربی میں نازل ہوا تمہارے لیے ایک بڑی عزت اور دائمی شہرت کی چیز ہے, تمہیں اس کی قدر کرنی چاہیے, جیسے کہ دنیا نے دیکھ لیا کہ اہل عرب کو حق تعالی نے قرآن کی برکت سے ساری دنیا پر غالب اور فاتح بنا دیا, اور پورے عالم میں ان کی عزت و شہرت کا ڈنکا بجا. اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ یہ عربوں کی مقامی یا قبائلی یا لسانی خصوصیت کی بنا پر نہیں, بلکہ صرف قرآن کی بدولت ہوا. اگر قرآن نہ ہوتا تو شاید آج کوئی عرب قوم کا نام لینے والا بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو عربوں کو اس وجہ سے دنیا کے اندر فضیلت نہیں ملی کہ وہ بڑے اچھے گھڑ سوار تھے, یا ان کو بڑی اچھی شعر و شاعری کرنی آتی تھی, یا ان کو جو ہے وہ سلسلہ انصاب کا بڑا علم تھا کہ جی فلانے کا باپ یہ تھا اس کا باپ یہ تھا, وہ بڑے رٹے ہوئے ہوتے تھے ان کو, اور یہ بڑی ان کے درمیان بڑا اس کے اوپر مقابلے بازی ہوا کرتی تھی کہ کس کو زیادہ نصب یاد ہیں. انسانوں کے تو کیا گھوڑوں کے نصب ان کو یاد رہتے تھے, اور یا یہ کہ یہ بڑے زبردست ٹریڈرز تھے, ادھر سے لے کر کے آتے تھے ادھر بیچتے تھے, ادھر سے لے کر کے آتے تھے ادھر بیچتے تھے, تو ان کو جو ہے وہ کامرس کے اندر بھی کامرس کے اندر بڑی ایکسپرٹیز حاصل تھی, لیکن ان کو دنیا میں عزت و مرتبہ ان کسی بھی کسی ایسی چیز کی وجہ سے نہیں ملا بلکہ قرآن کی وجہ سے ملا, ٹھیک ہے. تو فیہ ذکرکم, یہاں پر لفظ ذکر کی ایک تفسیر جو علماء نے بیان کری ہے وہ یہ کہ اس میں تمہاری عزت ہے, اس میں تمہاری شہرت ہے, فضیلت ہے اس قرآن کے اندر, ٹھیک ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر سے ایک تھوڑا سا مختلف مفہوم لیا کہ اس میں تمہارے لیے سفیشنٹ نصیحت ہے, بلکہ ہم نے اپنے مشائخ سے اس کی ایک اور تفسیر بھی سنی, ٹھیک ہے. وہ تفسیر بھی یقیناً کسی مفسر ہی نے کی ہوگی, لیکن ہم نے بیان بھی سنی اپنے شیخ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کے بیان کے اندر. وہ کیا تھی کہ فیہ ذکرکم, اس میں تمہارا تذکرہ ہے, ये जो किताब हमने तुम्हारे लिए नाजिल करी तो इसमें तुम्हारा तज़किरा है, यानी यू एज अ पर्सन, ए कारी जो तुम कुरान पढ़ रहे हो ना, इस कुरान के अंदर तुम्हारे बारे में बात है, कहीं ना कहीं है। तुम उसको तलाश करो कि भाई अल्लाह ताला ने मेरा जिक्र यहाँ पे, क्या मतलब मेरा जिक्र, मेरा एज अ पर्सन, माई नॉट माई नेम, ठीक है ना, कि भाई मैं जो 21वीं सदी के अंदर फलाने तारीख को पैदा हुआ और फलाने शहर में रहता हूं तो मेरा तस्करा फलाने, नहीं, बल्कि मेरी जो पर्सनैलिटी है, मेरी जो शख्सियत है, मेरी जो सिफात है, मेरी जो 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 बुराइयां हैं या मेरी जो अच्छाइयां हैं, उनका जिक्र जो है वो कुरान के अंदर मौजूद है। तो मेरे लिए पर्सनल नसीहत कुरान में मौजूद है, पर्सनल नसीहत, पर्सनल इबरत। एक तो होती है ना पूरे कौम के लिए इबरत है, पूरी कौम के लिए नसीहत है, नहीं, मेरे एज एन इंडिविजुअल नसीहत कुरान के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो हजरत ये वाली तफसीर बयान करते हैं, फिर फरमाते हैं कि जी जब हमने इस कुरान की आयत को पढ़ा तो हमने सोचा कि इस पूरे कुरान के अंदर मेरे लिए कौन सी वाली अल्लाह ताला ने मेरा जिक्र किधर किया है, ठीक है। तो अब सोच सोच करके एक आयत मिली जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया था, मफहूम याद है क्योंकि मैं हाफिज कुरान नहीं हूं, तो मफहूम क्या बनता है उस आयत का, कि आयत ही बल्कि याद करके आपको बताएं तो ज्यादा फायदा होगा। उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर उस आयत को निकाल करके फिर आपके सामने जिक्र करते हैं। तो बहरहाल एक तफसीर इसकी ये भी है कि तुम्हारा तस्करा इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। किसी को कोई सवाल हो तो आप पूछ लें। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.